ओम शांति।
स्वनिरीक्षण योग तपस्या अनुभूति भट्टी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तपस्या भट्टी में उद्घाटन सत्र से भी पहले क्लास कराने हेतु हमारे बीच पधारे हैं आदरणीय उर्मिला दीदी जी, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आदरणीय दीदी, बाल्यकाल से विद्यालय से जुड़े, एमए इंग्लिश से आपने एजुकेशन लिया और पंजाब की धरनी से बाबा का ज्ञान लिया। हर मास जो हम ज्ञानामृत पढ़ते हैं और बहुत उसका इंतजार रहता है, आप उसकी सह संपादक हैं, आप लेखनी की धनी हैं और लेख आदरणीय दीदी के आप पढ़ते ही रहते हैं। आपका मनन चिंतन बहुत अच्छा चलता है। बाबा के गुह्य शब्दों को बहुत सरल करके हम सभी के बीच आप रखते हैं। तो आज आदरणीय दीदी से सुनेंगे, माता ओ माता तुमको सब झुकाए माथा। पुनः हम दीदी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और अभी आदरणीय दीदी के मुखारविंद से सुनेंगे।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मधुबन की इस तपस्या भट्टी में आप सब तपस्या भूमि में पधारे हैं। आप सब बहुत बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि ऐसी भूमि पे पांव रखना ये भी हमारे पुण्य कर्मों का फल है। आज हम चर्चा करेंगे कि पूरे कल्प में, चारों युगों में, संगम युग में तो शिव बाबा ने ज्ञान का कलश माताओं बहनों के सिर पे रखा ही, लेकिन बाकी चार युगों में भी उनकी जो महिमा है, उनके जो गुण हैं, वो अवर्णनीय हैं। सतयुग में नारायण से पहले नाम श्री लक्ष्मी का आता है। सतयुग त्रेता तो है ही मातृ प्रधान युग, लेकिन जब द्वापर युग आया और उस द्वापर युग में चाहे भक्ति की पुस्तकें लिखी गई, चाहे भक्ति हुई, मंदिर बने और चाहे युद्ध भी हुए, इन सब में भी माताओं का बड़ा गुप्त योगदान रहा। एक बहुत पुरानी घटना, उसकी चर्चा अभी हम करेंगे। द्वापर के आरंभ की ही ये घटना है। एक वाचस्पति मिश्र नाम के भारत में दार्शनिक हुए हैं। उनकी इच्छा थी कि मैं अद्वैत वेदांत पे कुछ लिखूं। अद्वैत वेदांत के भामती नाम के संप्रदाय के वो रचयिता थे और उन्होंने अपनी माता को कहा कि मैं कुछ लिखना चाहता हूं, लेकिन मेरी एकाग्रता भंग नहीं होनी चाहिए। बचपन में ही उनकी शादी हो गई थी और जब उन्होंने मां को अपनी ये साहित्य साधना की बात बताई तो मां चूंकि काफी बूढ़ी थी तो उसने अपनी पुत्र वधु को अपने पास बुला लिया। और वाचस्पति मिश्र अपने कमरे में उठते ही लिखना चालू करते हैं। सिर्फ खाना और फ्रेश होना ये उनकी शारीरिक क्रियाएं हैं, बाकी लिखते रहते हैं। उन्हें कोई होश नहीं है कि लिखने के लिए स्याही कहाँ से आती है, भोजन कौन देता है, भोजन की झूठी थाली कौन उठाता है। बस उन्हें तो केवल लिखना है, लिखना है और लिखना है। तो जो पुत्र वधु थी वो अपने तन और मन से सेवा में लग गई और कुछ समय के बाद मां ने शरीर छोड़ दिया। वाचस्पति मिश्र को यह भी ध्यान नहीं रहा कि मां ने शरीर छोड़ दिया है, वो तो केवल लिखते रहे। और एक दिन ऐसा हुआ कि जो ही उनकी किताब पूरी हुई, कोई कहता है 12 वर्ष में, कोई कहता है 30 वर्ष में, कोई कहता है 40 वर्ष में, अलग अलग मत हैं कि वो किताब कितने वर्ष में पूरी हुई। लेकिन अगर 12 वर्ष में भी पूरी हुई तो कोई कम समय नहीं है 12 वर्ष। उन्होंने ऐसे नजर उठाई और इतनी देर में दिए का तेल खत्म हो गया, बाती बुझ गई। तो वो जो महिला थी उसको बड़ा दुख हुआ कि दिया बुझ गया और मिश्र जी की लेखन कार्य में व्यवधान पैदा होगा। तो वो दौड़ी दिए में तेल डालने के लिए और जैसे ही सामने पहुंची तो चूंकि वाचस्पति मिश्र ने अभी नजरें उठा ली थी, लेखन कार्य पूरा हो गया था और सामने एक अजनबी महिला को देख करके वो एकदम चौंक गए कि इस घर में ये महिला आई कहां से और ये कौन है और क्यों आई। तो उसने बड़ी नम्रता से पूछा कि देवी आप कौन है, आप इस घर में क्यों आई है, किधर से आई है, घर तो चारों तरफ से बंद है। तो उसने बड़ी नम्रता से कहा कि मैं पिछले 12 वर्ष से इस घर में हूं और आप याद कीजिए आपके साथ मेरी शादी हुई थी, से बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये मेरी पत्नी है और 12 साल से इस घर में है। अच्छा तो आप क्या करती हैं? तो बताया कि जो भोजन की थाली आपको दी जाती है फिर वो उठाई जाती है, दिए में तेल डाला जाता है, लेखनी के लिए दवात में स्याही डाली जाती है, वो सारे काम मैं करती हूं। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये मेरे इतने काम करती है और मुझे आज तक पता नहीं पड़ा कि घर में कोई है भी। उसने कहा आप अपने हाथ दिखाओ। हाथ दिखाए तो उसको लगा हाँ ये दो हाथ तो कई बार दिखे मुझे लेकिन फुर्सत ही नहीं थी सोचने की कि ये हैं कौन। और उस महिला ने भी 12 साल में कभी कोशिश नहीं की कि ये व्यक्ति मुझे जाने, वो भी छिपके रही क्योंकि जानेगा तो कार्य में व्यवधान पड़ेगा, इसका कार्य पूरा होना चाहिए। फिर वाचस्पति मिश्र ने पूछा कि अच्छा आप मुझे भोजन देती थी तो वो भोजन आता कहां से था। तो उसने कहा मैं जंगल में जाती थी दोपहर के समय खाली समय में और कुछ मूंज काट के ले आती थी, कोई एक पौधा होता है जिससे रस्सी तैयार होती है और उससे मैं बैठ के रस्सी बांटती थी और वो रस्सी बिकती थी तो उससे मुझे भोजन आपका और मेरा बन जाए, इतना धन प्राप्त हो जाता था। तो तो पिछले 12 वर्ष से उसी से रोजी रोटी चल रही है। तो वाचस्पति मिश्र को बड़ा पश्चाताप हुआ कि इस महिला ने आज तक मेरे से कुछ भी नहीं मांगा और इसने इतनी निस्वार्थ सेवा की, कभी परिचय भी नहीं हुआ और इसने अपना तन भी लगाया, मन भी लगाया, धन भी लगाया, मैं इसका ऋणी हो गया, अब मैं इसको क्या दूं। और फिर उन्होंने एक प्रतिज्ञा ये भी की थी कि जिस दिन मेरा ये वेदांत सूत्र का काम पूरा हो जाएगा मैं वनवास ले लूंगा, घर में रहूंगा नहीं। तो अब तो मुझे वैसे भी वनवास ले लेना है, भविष्य में भी मैं इसकी कोई सेवा नहीं कर सकता। तो उसने पूछा, अच्छा आपका नाम क्या है? बहन ने कहा, मेरा नाम भामती। तब वाचस्पति मिश्र ने अपनी उस किताब का नाम लिखा भामती और कहा कि आने वाला समय मुझे जाने या ना जाने, लेकिन आपको जरूर जाने, क्योंकि ये किताब जो पूरी हुई है ये आपकी तपस्या से पूरी हुई है, अगर आप ना होती तो मैं ये किताब पूरी नहीं कर सकता था। और भाइयों और बहनों, भामती नाम की वो किताब आज भी वेदांत सूत्रों की सर्वश्रेष्ठ किताब मानी जाती है और उसका श्रेय उस महिला को जाता है। और जब वो वनवास जाने लगे तब उस महिला ने कहा, मुझे आपके वनवास जाने का कोई दुख नहीं, मैं यहाँ रहूंगी। और जैसे अभी तक आप विश्व कल्याण का काम कर रहे थे और मैं आपको योगदान दे रही थी, आगे भी मैं सूक्ष्म रूप से आपको योगदान देती रहूंगी, आप बेशक वनवास लीजिए, आप जाइए, आपको जो साधना करनी हो कीजिए, आपकी साधना में मैं कहीं भी व्यवधान नहीं हूँ और मुझे उसका कोई दुख नहीं है, मैं आज भी आपकी सहयोगी हूँ और कल भी आपकी सहयोगी रहूंगी। ऐसा मिसाल शायद बाहर के किसी भी देश के इतिहास में नहीं मिलेगा जैसा भारत के इतिहास में भामती का मिसाल मिलता है। एक पवित्र ग्रस्त जीवन, एक ऊंचे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गृहस्थ की तुच्छ बातों का त्याग, संपूर्ण समर्पण, जिसमें केवल आत्मा की उन्नति है, आत्मा से प्रेम है, आत्मा की खुशी की बात है, इसके अलावा उस ग्रस्त जीवन में और कुछ भी नहीं है। और यही कारण है कि ग्रस्त जीवन तो करोड़ों लोगों ने जिए लेकिन वो यादगार नहीं बने, लेकिन वाचस्पति मिश्र और भामती का ग्रस्त जीवन यादगार बन गया। आज लोग उसे याद करते हैं, उससे प्रेरित होते हैं, उससे शिक्षा लेते हैं और आज हम भी उसको याद कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बाबा जिस पवित्र ग्रस्त जीवन की स्थापना कर रही हैं और जिसमें हमारी माताओं का बहुत 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 योगदान है, वो भी एक मिसाल है। बाबा ने कहा, बाकी लोगों की मिसालें तो हु इज हु किताब में आती है, लेकिन आपकी मिसाल तो शास्त्रों में आएगी, जिसे लोग प्रातः स्मरणीय समझ करके पढ़ेंगे, याद करेंगे और सुनाएंगे। तो ऐसी ग्रस्त में पवित्र जीवन को धारण करने वाली आप सब माताओं को वंदे मातरम। बाद में इस देश में कई राजनीतिक संकट आए। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, ये भी सतयुग, त्रेता और द्वापर के 500 साल मिला के लगभग 300 साल या उससे कुछ ज्यादा साल गुजरे और सिकंदर ने आक्रमण किया। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि द्वापर युग आते 500 साल तक तो कोई युद्ध नहीं होता, लेकिन 500 साल के अंदर अंदर इस देश में इतने अधिक राजा हो जाते हैं कि फूट पड़ जाती है, और उस फूट के कारण बाहर के लोगों को रास्ता मिलता है, फूट भी रास्ता देती है और धन उनके लालच को बढ़ाता है। तो फूट और धन, ये दोनों चीजें उन्हें आकर्षित करती हैं। तो जब सिकंदर आया और उसने जगह जगह लूटपाट की, तो उस समय तक्षशिला में एक शिक्षक था जिसका नाम था चाणक्य, और चाणक्य ने भी देखा कि जब तक माताएं आगे नहीं आएंगी तब तक मैं सिकंदर को भारत से भगा नहीं सकता। तो चाणक्य महिलाओं से मिलने जाता था और महिलाएं उसे दो चीजें देती थी जो युद्ध के लिए बहुत आवश्यक है। नंबर एक, उस समय की तक्षशिला की महारानी कल्याणी, जिसने अपना सारा जेवर पोटली में बांध के चाणक्य को अर्पित कर दिया था कि मैं तो घर में बंधक की तरह से हूं, लेकिन आप मेरे इस धन को अगर भारत देश की आजादी में लगा सकें तो मैं समझूंगी कि मैंने भी कुछ योगदान दिया। और दूसरा, माताओं ने योगदान दिया, चाणक्य ने घर घर जाकर के नौजवानों की मांग की थी, माताओं को कहा था कि अपने पुत्र मुझे दे दो, जो पुत्र प्राणों से भी प्रिय होता है। लेकिन जब चाणक्य कहता था कि एक तुम भी मां हो और एक ये धरती भी मां है, अगर तुम्हारे पे संकट आए तो क्या हम पुत्र चुप रहेंगे? और आज धरती माता पर संकट आया है तो क्या आपका पुत्र घर में बैठ करके आपकी लोरियां सुनता रहेगा? ये धरती माता तो आपसे बड़ी भी मां है, इसलिए आज जब इस पर संकट आया है तो अपने पुत्र को मेरे हवाले करो ताकि मैं इस धरती माता के संकट को मिटाने में उसका योगदान ले सकूं। और उसकी वाणी में ऐसा आकर्षण होता था कि माताएं अपने पुत्र चाणक्य को सौंप देती थी। और सचमुच माताओं के इस योगदान के बल से चाणक्य सिकंदर को भगा सका और चंद्रगुप्त मौर्य का एक छत्र राज्य भारत में स्थापित हुआ। तो वहां भी हमारी माताओं ने देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत योगदान दिया। उसके बाद अभी कुछ वर्ष पहले भारत का आजादी का संघर्ष चला और महात्मा गांधी की लीडरशिप में इस संघर्ष में भी माताओं बहनों ने बहुत योगदान दिया। भले ही इतिहास में वर्णन अधिक पुरुषों का है, लेकिन माताओं का योगदान बड़ा गुप्त था। जब महात्मा गांधी ने सत्याग्रह को चलाया तो बड़े बड़े राजपूत घरानों की, बड़े बड़े साहूकार घरानों की महिलाएं घूंघट छोड़ करके गांधी के साथ चली, तिरंगा हाथ में लेकर के चली। और जब अंग्रेजों के सिपाही हाथ में तिरंगा लिए हुए महिला को गोली मार देते थे तो जो पीछे की महिलाएं होती थी वो तिरंगे को गिरने नहीं देती थी, तिरंगे को पकड़ लेती थी, जिसको गोली लगी वो महिला गिर जाती थी, लेकिन पीछे वाली महिला फिर तिरंगे को पकड़ लेती थी। और इस प्रकार ये चेन चलती रहती थी, गोलियां खाती रहती थी, लेकिन तिरंगा नहीं गिरता था। महात्मा गांधी ने लिखा, अगर महिलाएं योगदान ना देती तो मैं कई शताब्दियों तक भारत को आजाद नहीं करा पाता। और बहनों, एक संकट भारत के आजाद होने के बाद भी भारत पर छाया हुआ है, और वो संकट है अनैतिकता का, चरित्रहीनता का, विकारों का, अमर्यादा का। और ये तो ऐसा संकट है जो माताओं के बिना मिट ही नहीं सकता। इसलिए भगवान ने कहा, नारी स्वर्ग का द्वार है। मैं स्वर्ग का द्वार तब तक नहीं खोल सकता, भगवान कहता है, जब तक माताएं हाथ ना लगाएं, माताएं आगे ना आएं, माताएं योगदान ना दें। भारत की आजादी में बाबा ने एक मुरली में कहा था, पुरुषों ने बहुत कष्ट सहन किए, लेकिन ईश्वरीय कार्य में पुरुषों से अधिक महिलाएं सहन करती हैं, इसलिए इस कार्य में महिलाओं का योगदान ज्यादा है। भाई हैं लेकिन महिलाएं अधिक ईश्वर प्रेमी हैं, अधिक कष्ट सहिष्णु हैं, अधिक त्यागी हैं, और पवित्रता के लिए तो मानो वो परमात्मा के दिल पर चढ़ी हुई हैं। एक्सेप्शन तो सब जगह होते हैं, लेकिन हम बात मेजॉरिटी की कर रहे हैं। इसलिए जिसने ईश्वर के कार्य में इतना योगदान दिया, आधा कल्प तो वो साकार में देवी रूप में रहेगी ही, लेकिन बाद के आधा कल्प में उसकी कितनी यादगारें। अब देखिए, भारत के देशी महीनों में जो तिथियां हैं, सभी तिथियां स्त्रीलिंग, एकम, दूज, तीज, चौथ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, ग्यारस, बारस, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या या पूर्णमासी, सब स्त्रीलिंग। जितनी भी नदियां हैं सब स्त्रीलिंग, और जितने भी गुण हैं, सत्यता, नम्रता, पवित्रता, धैर्यता, संतुष्टता, अंतर्मुखता, सहनशीलता, सबके सब स्त्रीलिंग है, इसलिए इनको स्त्रैण कहा जाता है। और ये कहते हैं कि अगर एक पुरुष में ये गुण आते हैं तो अपनी माँ के सानिध्य से ही आते हैं। इतिहास के जितने भी राजा हुए, उन राजाओं की माताएं अगर उन राजाओं के साथ रही, या उन राजाओं ने अपनी माओं को सम्मान दिया, या राजकार्य में अपनी माओं की सलाह मशविरा ली, वो राजा हमेशा दयालु रहे, क्योंकि माँ के जो दया के या रहम के या सहानुभूति के गुण थे, वो उनमें कदम कदम पर साकार होते गए। और इसका एक बहुत बड़ा मिसाल शिवाजी महाराज, जिनकी मार्गदर्शक उनकी माँ थी, और उन्हें इतिहास का सर्वश्रेष्ठ राजा माना जाता है, सिर्फ इसीलिए कि वो माँ के गुणों को जीवन में कदम कदम पर प्रत्यक्ष करते रहे। और बहुत क्रूर राजा भी हुए हैं, उसका कारण यही हुआ कि उन्हें या तो माँ का सानिध्य नहीं मिला, और अगर मिला भी तो उन्होंने माँ को इग्नोर किया, इसलिए वो दया और वो रहम उनके जीवन में आ नहीं पाए। हमारे शास्त्रों में माता की बहुत महिमा है। एक यक्ष युधिष्ठिर संवाद आता है महाभारत में, आपने कहानी सुनी होगी कि जब अज्ञातवास में पांडव थे, उन्हें बहुत प्यास लगी और एक जलाशय में वो पानी लेने गए। वहां एक यक्ष था जिसने जो भी पानी लेने आया उसी से प्रश्न पूछे और उन्होंने उत्तर नहीं दिए तो वो बेहोश हो गए और लास्ट में युधिष्ठिर आया। तो यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, भूमि से भारी कौन? और तब युधिष्ठिर ने कहा था, माता गुरु तरह भूमि है, जो माता है वो भूमि से भी भारी है। ये पृथ्वी जितना भार उठाती है, माता उससे भी अधिक भार उठाती है, बहुत भार उठाती है। माता गुरु तरह भूमि है। उसके बाद मनुस्मृति के अध्याय 2 के 145वें श्लोक में लिखा है, सहस्त्रम तु पितृन मातु गौरवेणानी रिच्यते। एक माता का स्थान हजार पिताओं से भी बढ़कर है। शंकराचार्य ने कहा, कुपुत्रो जायते न कब्जत अपि कुमाता भवती। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। तृतीय उपनिषद में लिखा है, मातृ देवो भव, अर्थात माता देवता के समान है। रामायण में श्री राम के मुख से 2 बार कहलवाया गया है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गाद अपि गृहसी। जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से भी बढ़ करें। हजरत मोहम्मद ने अपनी एक हदीस में लिखा है, जन्नत मां के कदमों में है। एक बार उनसे पूछा गया कि मेरी अच्छे व्यवहार की सबसे पहली हकदार कौन है? उन्होंने कहा, तेरी मां। पूछा, दूसरे नंबर पे हकदार कौन है? बोला, तेरी मां। तीसरे नंबर पे हकदार कौन है? बोला, तेरी मां। चौथे नंबर पे हकदार कौन है? तब कहा, तेरा पिता। अर्थात पिता की भेंट में मां को 3 गुना अधिक महत्व दिया मोहम्मद ने। और स्वयं भगवान ने कहा, वंदे मातरम, मैं भी माताओं की वंदना करता हूं। तो ऐसी महान माताएं शांतिवन में पधारी, बाबा के दिल में पधारी, बाबा की गोदी में पधारी। तो ये कितना सुंदर दृश्य है। माताएं स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हैं, उनमें कुछ नैसर्गिक गुण हैं। उन गुणों की अब हम चर्चा करेंगे कि जो जन्मजात गुण हैं, वो बाबा की सेवा में किस तरह से काम आते हैं। सबसे पहला गुण है मैचिंग का गुण। माताओं में एक वस्तु का दूसरी वस्तु से मैच करने का गुण होता है, होता है ना? जैसी शर्ट हो, वैसा ही नीचे का कपड़ा हो, वैसा ही जूता हो। बच्चे को जब ड्रेस पहनाती हैं तो मैच करके पहनाती हैं, बाजार से जब खरीद के लाती हैं तो मैच करके चीज खरीदती हैं, और जब श्रृंगार करती हैं तो भी मैचिंग करती हैं। कान में जैसे रंग का हो, गले में वैसे ही रंग का हो, रंगों की मैचिंग होती है। तो ईश्वरीय कर्तव्य में भी ये मैचिंग बहुत काम आती है। कैसे काम आती है? ईश्वरीय कर्तव्य में मन, वाणी और कर्म की मैचिंग। जैसी मन में बात हो वैसी ही वाणी में और वैसी ही कर्म में, तो मैचिंग हो गई ना। मन में बात बड़ी ऊंची हो और वाणी में छोटी और कर्म में बहुत ही छोटी हो तो क्या कहेंगे? भाई ऊपर का कुर्ता तो कई लाख का और नीचे का पजामा फटा हुआ, मैचिंग नहीं हुई। तो मैचिंग का मतलब है मन में जितने ऊंचे विचार थे वाणी की ऊंचाई भी उतनी ही हो, और कर्म में जब वो बात आए तो वो भी फिर उतनी ही ऊंची हो। तो ये मैचिंग का गुण ईश्वरीय कर्तव्य में बहुत आवश्यक है। दुनिया में आज करनी कथनी का भेद बहुत है। लोग कथनी के माहिर हैं लेकिन करनी में जीरो, कथनी में हीरो। बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन जब करने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। आज लोगों को अपनी वाणी की कदर नहीं है, मैंने क्या बोला था, खुद ही बोलते हैं और खुद ही उसको विस्मृत कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो ये है मैचिंग का गुण। दूसरा गुण है जो चीज बदरंग हो जाती है उसको संवारने का गुण है। अगर कोई घर का कपड़ा, बर्तन, वस्तु, उसकी कलई उतर जाए तो कलई करवा के उसे चमका लेती हैं। अगर कहीं से रंग रोगन फैड हो जाए तो सबसे पहले महिलाएं कोशिश करती हैं कि ये सुंदर बन जाए। और भी बहुत चीजें हैं जिन्हें संवारती हैं, सुंदर बनाती हैं। तो इसी तरह से 5000 की साल की यात्रा में हमारे जो मूल संस्कार थे वो बदरंग हो गए, उनका ओरिजिनल कलर खत्म हो गया है। शांति का जो संस्कार था कितना बदरंग हो गया, उसमें क्या क्या मिल गया, क्या क्या मिलावट हो गई। प्रेम का जो संस्कार था वो कितना बदरंग हो गया, धूमिल हो गया। प्रेम जैसे कि बचा ही नहीं, कहां कल कल करती नदी की तरह स्वच्छ थी प्रेम की धारा, और आज देखिए उसमें मोह, स्वार्थ, दिखावा, क्या क्या मिलकर के वो धारा कितनी बदरंग हो गई। प्योरिटी, मन कितना निश्चल था लेकिन आज उस पवित्रता की धारा में छल, कपट, दुराव, छिपाव, ये सब भी उस धारा को बदरंग बनाए हुए हैं। तो ये जो शांति का संस्कार था, प्रेम का था, पवित्रता का था, त्याग का था, दया का था, करुणा का था, ये सब बदरंग हो गए। अब क्या करना है हमको? जैसे हमने घर संवारा, कपड़े संवारे, बच्चों को साफ सुथरा रखा, सजाया, पहनाया, ऐसे हम अपने संस्कारों को भी सजाएंगे। अगर उसमें कई अहंकार का पुट है, अगर कहीं ईर्ष्या की जलन है, अगर कहीं दिखावे की कालिक है, अगर कहीं स्वार्थ का घुन लगा है, तो इन सब चीजों को खत्म करके अपने मूल संस्कारों को भी फिर से सजाएंगे। तो ये सजावट का संस्कार भी ईश्वरीय कार्य में बहुत मदद करता है। फिर हमारी माताओं बहनों में एक और गुण है, कहानी सुनने का और सुनाने का। कहानी सुनने में बहुत रुचि होती है, व्रत करती हैं तो भी कहानी सुनती हैं, खुद भी बच्चों को कहानियां सुनाती हैं और बच्चों को कहानियां सुना सुना करके उनसे कई बुरी आदतें छुड़ा भी देती हैं। कहानी में ताकत बहुत होती है। आपने एक अलिफ लैला सीरियल कभी देखा हो या उसके बारे में सुना हो, उसमें तो आता है कि एक बड़ा क्रूर बादशाह था। क्रूर भी क्यों बना, क्योंकि उसको किसी महिला से नफरत हो गई, शायद उसकी पत्नी ही थी उसके किसी कर्म को देख के, और फिर उसने सारी नारी जाति को ही अपना दुश्मन मान लिया। तो वो क्या करता था, प्रतिदिन अपने राज्य की एक महिला से, मतलब कन्या से शादी करता था और सुबह उसकी गर्दन उड़ा देता था, अगले दिन फिर शादी करता था और फिर उसकी गर्दन उड़ा देता था। ऐसे प्रतिदिन एक कन्या की वो हत्या करता था। और एक दिन उसके अपने मंत्री की बेटी, मंत्री ही उसके लिए कन्याएं लेके आता था, और उसकी अपनी मंत्री की बेटी एक दिन मंत्री को कहती है कि आज राजा से शादी मैं करूंगी। तो मंत्री कहता है तुमको पता है इसका परिणाम क्या होगा? तो वो बेटी कहती है कि राज्य की इतनी बेटियां मर गई, वो भी तो आपकी बेटी थी, आज अगर मैं मर जाऊंगी तो क्या बड़ी बात है, या तो मैं मर जाऊंगी या राजा को बदल डालूंगी, लेकिन आज राजा से शादी मैं ही करूंगी। और वो बहुत जिद करती है, तो मंत्री भरे दिल से अपनी बेटी को ही उस राजा के पास छोड़ के आता है। और वो बेटी अपने साथ अपनी छोटी बहन को ले जाती है, शर्त है उसकी, और शादी होती है। और वो अपने ससुराल के घर में जाती है और अपनी छोटी बहन को कहती है, कल मैंने तुमको एक कहानी, वो छोटी बहन कहती है, दीदी कल आपने मुझे बहुत अच्छी कहानी सुनाई थी ना, आज भी एक कहानी सुना दो। और वो उसको कहानी सुनाना चालू करती है और राजा कहानी सुन रहा है, और वो कहानी ऐसी है कि सारी रात गुजर जाती है, कहानी खत्म ही नहीं होती। और सुबह मरने की बारी आती है और मारने वाले लोग आते हैं, तो राजा कहता है ठहरो, अभी कहानी अधूरी है, इसे पूरी हो जाने दो। उसके बाद कहानी को वो चालू रखती है, राजा सोचता है ये कहानी पूरी होगी फिर इसे मरवाऊंगा, लेकिन वो कहानी को पूरा करती ही नहीं है। और पूरा करती है तो ऐसे मोड़ पे जहां क्यूरियोसिटी है, तो अगले दिन फिर वो मारने वाले आते हैं और राजा कहता है ठहरो अभी कहानी पूरी होने दो। और ऐसे करते 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 कहानी में कुछ ऐसी घटनाएं आती हैं, राजा का हृदय परिवर्तन हो जाता है और उसके बाद उसका वो कत्ल करने का जो है वो खत्म हो जाता है। तो कहानी में बड़ी ताकत होती। तो बाबा ने ज्ञान का कलश हम सबके सर पे रखा, और बाबा ने कहा इस सृष्टि चक्र का जो ज्ञान है ना, इसको भी एक कहानी की तरह से रिपीट करो और सुनाओ। ये भी एक कहानी, कहां से शुरू होती है ये कहानी? एक बार आज से 5000 साल पहले भारत में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था। वो दोनों गद्दी पर विराजमान रहते थे, उनके राज्य में बहुत सुख और समृद्धि थी, उनकी प्रजा उनकी तरह ही दो ताजधारी थी। उनके राज्य में घी दूध की नदियां बहती थी, सोने के महल थे, प्रकृति उनकी दासी थी। उनकी आयु 150 साल थी, अकाल मृत्यु नहीं होती थी और उनका जो इकलौता पुत्र होता था वो उनका उत्तराधिकारी बन जाता था। इसलिए कभी प्रॉपर्टी का वह बंटवारा नहीं होता था, प्रॉपर्टी के नाम पे कभी झगड़ा नहीं होता था। 100% सुख शांति पवित्रता का वो राज्य था। उसके बाद ये सूर्यवंशी राज्य 1250 साल चला और फिर चंद्रवंशियों की राजधानी आई, उसमें श्री सीता श्री राम का राज्य आया। ये भी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, 14 कला थे, इनके राज्य में भी प्रकृति दासी थी, निरोगी काया थी, अधिक भौतिक दैविक तापा राम राज्य का हुना व्यापा, कोई मानसिक शारीरिक प्राकृतिक प्रकोप नहीं था। उसके बाद एक ताज वाले राजाओं का राज्य आया, रावण एक ताज को ले गया और यहां रावण की शुरुआत हुई। थोड़ी अशांति विकार शुरू हुए, परस्तो प्रधान विकार थे, इसलिए धन दौलत बहुत था, सुख बहुत था, लेकिन द्वापर काल का आधा समय गुजरते गुजरते फूट पड़ी, युद्ध शुरू हुए और ये भारत धीरे धीरे कंगाल होता गया। उसके बाद कलयुग आया, राजाओं का वो एक ताज भी चला गया, टोपी भी गई, पगड़ी भी गई और धीरे धीरे सिर के बाल भी गए। अब तो चिंता तनाव भारीपन इन सब के कारण आत्मा भी काली हो गई और जब कलयुग का अंत आया, आत्माएं पुकारने लगी तो वो दयालु शिव बाबा आया और उसने आकर के अपने बच्चों को अपनी गोद में ले लिया और खोया हुआ राज्य भाग्य फिर से दे दिया, फिर से 2 ताज वाला राजा बना दिया। ये कहानी ही तो है और क्या है, ये कहानी सुननी भी है और सुनानी भी है, यही वर्त कथा है। हमारा तो आजीवन वर्त है। कौन सा वर्त है? पवित्रता का वर्त है और इस वर्त में ये कथा रोज सुननी है और रोज सुनानी है। और उसके बाद दया बहुत होती है महिलाओं में, माताओं में, बहनों में, दया की देवी होती है। किसी का दुख देखेंगी तो आंखों में आंसू आ जाएंगे, कोई कहानी सुन रही होंगी और उसमें कोई पे दुख पड़ेगा तो रोने लगेंगे, कई भाई भी इमोशनल हो जाते हैं पर महिलाएं अधिक इमोशनल होती हैं। तो इस सृष्टि चक्र की कहानी में वर्तमान समय कितने दुख हैं। आर्टिफिशियल कहानियों को सुन सुन के तो हम बहुत रोए, रामायण की कहानी सुनी, सीता का दुख खूब रोए, महाभारत में द्रौपदी का दुख देखा बहुत रोए, लेकिन वो तो कहानियां थी। वर्तमान समय रियल जो दृश्य हमारे चारों ओर है, इसमें तो दुख के सिवाय, कष्ट के सिवाय और कुछ है ही नहीं। व्यक्ति गरीब है, भूखा है, अशांत है, बीमार है, कहीं उसका शोषण हो रहा है, कहीं उसके साथ अन्याय है, कहीं उसको दुत्कार मिलती है, कहीं उसका अपमान है, कितनी प्रकार के दुख। बाबा ने एक मुरली में कहा था दुखों की लिस्ट निकालो, ये रोरव नरक है, विषय वैतरणी है, घोर अंधकार की दुनिया है, दुखों के पहाड़ टूट रहे हैं। तो रियल जिंदगी के रियल दुखी पात्रों को देख करके हमको क्या करना है, उन पे दया करनी है, आंसू नहीं बहाने हैं लेकिन दया करनी है, उनके दुख दूर करने हैं। जैसे दादी जानकी ने एक बार कहा था कि दया में और रहम में क्या अंतर, जो दयालु होता है वो देख करके पसीज जाता है पर करता कुछ नहीं, लेकिन जो रहमदिल होता है वो केवल पसीजता नहीं है लेकिन वो उनके लिए कुछ करने के लिए दृढ़ संकल्पित होता है। तो ऐसे हमें दृढ़ संकल्पित होना है जो दुखी हैं, इस कहानी के जो रियल पात्र हैं और जो दुखी हैं। कितनी सीताएं हैं जो रावण की जेल में, उन असली सीताओं को जेल से बाहर निकालना है। कितने ध्रुव हैं जो सौतेले पिता का अत्याचार सहन कर रही हैं, कितने प्रह्लाद जो राक्षस जैसे पिता का अत्याचार सहन कर रही हैं, कितनी द्रौपदियां हैं जो कौरवों का अत्याचार सहन कर रही हैं। तो उनके लिए दिल में सच्ची दया, ये ईश्वरीय कार्य में हमें सहयोग देना है। फिर माताओं को लक्ष्मी कहा जाता है और चित्रों में हम देखते हैं कि लक्ष्मी दो चीजें दे रही है, एक तो धन दे रही है एक हाथ से ऐसे और दूसरे हाथ से आशीर्वाद दे रही है। कितने बरस हो गए उसको देते देते, ना उसका धन खुटा ना उसके आशीर्वाद खुटे। इसलिए कहते हैं देने वाला सदा भरपूर रहता है और मांगने वाला सदा खाली रहता है। वैसे भी आप देखो जो लेने वाला होता है ना उसका हाथ नीचे होता है, बेशक वो बड़ा हो अमीर हो, और देने वाला बेशक छोटा भी हो तो भी देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर रहता है। तो लक्ष्मी अर्थात देने वाली, तो ईश्वरीय कार्य में हमारा देने का संस्कार हमें बहुत काम आता है। हमें देने वाला बनना है, देवी बनना है, देवता बनना है, दाता बनना है, लेवता नहीं बनना, लेने का संकल्प नहीं करना। मैंने इतना दिया ये कुछ तो दे। लक्ष्मी ने कभी कहा धन बांटते कितने बरस हो गए कोई लौटाए, दुआ बांटते कितने बरस हो गए कोई लौटाए। दिए जा रही है, दिए जा रही है, दिए जा रही है। तो ये हमारा यादगार है, हमारा देने का यादगार है, इस संगम युगी दातापन का यादगार है। इसके बिना विश्व परिवर्तन का कार्य नहीं हो सकता। लेने वाले दुनिया कैसे बदलेंगे, लेने वालों ने तो दुनिया का ये हाल कर दिया जो आज है। आज जब हम लक्ष्मी की तरह से दाता बनेंगे, निरंतर दाता, नेत्रों से भी देना, वाणी से भी देना, हाथों से भी देना, कर्मों से भी देना, हर श्वास देना, लेना ऊपर वाले से और देना मानवों को। बाबा कहते हैं कभी उलट मत देना, मनुष्यों से लेने की कामना करना, ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य तो खाली बैटरी है। अब आप खाली बैटरी वाली गाड़ी को कहो कि मुझे दिल्ली तक पहुंचा दो, खाली बैटरी वाली गाड़ी आपको दिल्ली तक पहुंचाएगी? तो दुनिया के जो भी लोग हैं, पुत्र है, पति है, भाई है, बंधु हैं, मित्र हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, वो सब कौन है? खाली बैटरी वाली गाड़ी है। और आप सोचते हैं मैं इस गाड़ी में बैठूं और ये मुझे कहीं दिल्ली बंबई तक ले जाए। वो एक जगह खड़ी छुक छुक करती रहती है, चलती नहीं, और आप कई बार परेशान हो जाते हो, देखो मैंने छोटा सा काम कहा और इसने किया ही नहीं। अरे करिए कैसे, ये खाली बैटरी है, ये तो आपसे करवाने की इच्छा रख रहा है, करेगा कहां से? तो हम सचमुच लक्ष्मी हैं और लक्ष्मी बनके हमें सबको देना है, अपने पराए, प्रशंसक, निंदक, चाहने वाले ना चाहने वाले, सहयोगी विरोधी, सबको देना है। लक्ष्मी के मंदिर में सब जाते हैं, छट छट के नहीं जाते, सब तरह के लोग जाते हैं, वो सबको देती। तो ये दातापन का संस्कार, ये भी बाबा के विश्व परिवर्तन के कार्य में बहुत आवश्यक है। इसके बाद एक संस्कार होता है समाने का, बच्चे ने कोई गलती करी तो झट समा लेगी, घर के लोग पूछेंगे ये बच्चे ने आज किया, मैंने सुना आपका बच्चा चोरी करके आया। नहीं नहीं, तुमने झूठ सुना है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। सुना है आज आपके घर में झगड़ा हुआ? ना ना, ऐसे ही वो कोई छोटी मोटी बात थी, झगड़े की कोई बात नहीं है। तो समाने का संस्कार है, अपने घर की बातों को, घर की इज्जत को, पति की इज्जत को, भाई की इज्जत को, भाई जेल चला जाए कोई पूछे मैंने सुना आपका भाई जेल गया, नहीं नहीं उसने कुछ किया ही नहीं था, वो तो झूठा इल्जाम लगा के ले गए, अभी छूट जाएगा बस। तो घर के लोगों की इज्जत को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करती है, कभी भी उड़ाती नहीं। अब विश्व कल्याण में भी ये संस्कार बहुत काम आता है, क्योंकि अभी तो हम एक घर की माता थी, इसलिए हमने अपने घर वालों की बुराइयों को समाया। लेकिन अब जब बाबा के बने तो कौन सी माता बन गए? जगत माता बन गए। और जगत माता बन करके अब हमें हर घर की बुराई को समाना है, ना कि फैलाना है। अब हर घर मेरा है, हर बच्चा मेरा, हर परिवार की इज्जत मेरी इज्जत, यज्ञ की इज्जत मेरी इज्जत, सेंटर की इज्जत मेरी इज्जत। तो जैसे मैंने उस घर की इज्जत को बना के रखा, बचा के रखा, ऐसे मुझे सेंटर की, यज्ञ की कोई छोटी मोटी बात, कमी कमजोरी कहीं दिख भी जाए, तो जैसे मैंने भाई की बात को छिपाया, पति की बात को छिपाया, ऐसे मुझे इस बात को भी छिपा करके उसको फैलाना नहीं है। फैलाने से कोई फायदा नहीं है, छिपाना भी है और खत्म करने में सहयोग भी देना है। तो ये संस्कार भी ईश्वरीय यज्ञ के संपन्न होने में एक बहुत बड़ी आहुति का काम करता है। और अगला संस्कार कौन सा है? सौंदर्य पिपासा, सुंदर बनने का, सुंदर बनाने का संस्कार है। सजने का, सजाने का संस्कार है। तो उसके लिए मीठे बाबा ने माताओं को काम दिया है। दुनिया में 16 श्रृंगार होते हैं ना, तो यहां भी बाबा ने आत्मा सजनी के 16 श्रृंगार किए हैं। आत्माएं तो सभी सजनियां हैं, चोला चाहे जो भी हो, मुखोटा चाहे जो भी हो, जो भीतर बैठी है वो आत्मा शिव साजन की सजनी। तो शिव साजन ने काम दिया है, हे सजनियों, जन्म जन्म तुम सजती आई, लेकिन वो सजावट ऐसी थी पल में सजे और पल में धूमिल हो गई। अब मैं ऐसी सजावट लेके आया हूं जो 21 जन्म उतरेगी ही नहीं। सबसे पहले है हमारी मांग की लाली। कहा जाता है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो ये जो ब्रह्मांड है इसका सबसे ऊपर का जो हिस्सा है कौन सा है? वो परमधाम। और परमधाम का रंग कैसा है? लाल सुनहरी। तो वास्तव में ये याद कराती है कि सबसे ऊपर का जो हिस्सा है वो लाल सुनहरी है। इसलिए आप देखते हैं बिंदी हरी पीली कैसी भी लगाई जा सकती है, लेकिन मांग कभी भी हरी पीली नहीं होती। परमधाम का रंग कभी बदलता नहीं है, इसलिए ये परमधाम की निशानी है। उसके बाद आइए मस्तक की बिंदी, ये आत्मा की यादगार है। मस्तक में चमकती दमकती आत्मा, उसको लगाए रखना, ये हमारा श्रृंगार है। उसके नीचे आइए आंखें, आंखों में प्योरिटी, भाई भाई की दृष्टि, ये हमारा श्रृंगार है। उसके बाद आइए कान, कानों में ज्ञान रूपी कुंडल, कान के अंदर ज्ञान रतन प्रवेश करें, कूड़ा करकट अंदर ना जाए, तो ये ज्ञान रूपी कुंडल श्रृंगार है। और नीचे आइए, नाक में भी एक श्रृंगार पहनते हैं, और वो नाक का जो श्रृंगार है वो है कुल की इज्जत। नाक हमेशा ऊंची रहे। साकार में बाबा कहते थे, बच्चे मेरी दाढ़ी की लाज रखना, अर्थात इस ईश्वरीय कुल की नाक हमारे कारण ऊंची रहे। ये नाक का श्रृंगार है। और नीचे आइए, मुख, और मुख का श्रृंगार है हमारी मुस्कान। उससे और नीचे आइए, गला, गले में भी बहुत कुछ पहना जाता है, लेकिन यहाँ ईश्वरीय कार्य को संपन्न करने के लिए गले का श्रृंगार है मीठा बोल, मीठी वाणी। और उसके बाद हाथों का श्रृंगार, हाथों में सबसे पहले ऊपर में बाजू बंद होते हैं, ईश्वरीय कार्य रूपी बाजू बंद है। मैं भगवान का राइट हैंड हूं। और उसके बाद हाथों का कंगन, बाबा कहते हैं सिख लोग भी कंगन पहनते हैं, ये पवित्रता का प्रतीक है। ईश्वरीय कार्य में मुझे पवित्रता का 100% योगदान देना है, मनसा वाचा कर्मणा। और उसके बाद हाथ में ही अंगूठी पहनते हैं, ये है ईश्वर के सगे बच्चे बनने का प्रतीक। अंगूठी सगाई की प्रतीक है, सगे बन गई, लगे बच्चे पहले थे लेकिन अब बाबा के सगे बच्चे बन गए, सगाई हो गई। और उसके बाद ये कमर में तगड़ी पहनते हैं, ईश्वरीय कार्य की तगड़ी कौन सी है, साहस, हिम्मत, हिम्मते बच्चे मददे बाप, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ, हजार कदम से बाबा मदद करेंगे। और नीचे आइए, पांव में वो जो बजती है चांदी की पहनी जाती है पायल, बाबा कहते हैं चाल चलन ब्रह्मा बाप समान हो। आज की मुरली का जो स्लोगन था, अगर फर्स्ट नंबर लेना है तो ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो, तो मेरा चाल चलन ब्रह्मा बाप समान हो। और उसके बाद पांव की उंगली में भी एक चांदी की चीज पहनी जाती है, मेरे हर कदम में पदम की कमाई हो। ये बिछुआ इस बात का प्रतीक है। और उसके बाद हाथ और पांव के नाखूनों को रंगा जाता है, अर्थात 20 नाखून का जोर लगा करके भी मुझे कर्मातीत अवस्था को पाना ही है। तो ये जो सजावट का संस्कार है, सजने का, सुंदर बनने का, ये भी ईश्वरीय कार्य में बहुत मददगार है। आप अपने इस संस्कार को बनाए रखिए, लेकिन इसे ईश्वरीय कार्य के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए, ढाल लीजिए। ओम शांति। अभी पुनः बाबा को शुक्रिया करेंगे एक मिनट के लिए।
प्रभु का मिला सहारा, हम खुश नसीब।